ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा का बनने के बाद बाबा ने हम बच्चों को इतने स्वमान दिए, जिस स्वमानों के आगे ये जो विनाशी टाइटल देते ये कुछ भी नहीं। बाबा कहते एक एक स्वमान भी अगर सारे दिन में याद कर लो तो तुम्हारी स्थिति देखो कितनी टॉप हो जाएगी। आज का जो हमारा विषय है प्यूरिटी की पर्सनैलिटी या पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। पवित्रता के सागर ने आकर के हम बच्चों को अपने गोद का बच्चा बनाया। सत्ययुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश होती है, द्वापर और कलयुग में भोग बल की पैदाइश होती है, और ये एक ही ऐसा संगम है जिस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ब्रह्मा मुख से पैदा होते। तो हमारा जन्म ही पवित्रता के आधार पर हुआ है। हमारा पिता पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं जो है, हमारा स्वधर्म पवित्रता है, हमारा असली घर पवित्र है, पवित्र धाम। हमारा जो वर्षा है वो भी पवित्र है। हमारे आदि और अनादि संस्कार ही पवित्र। ये तो संघ का रंग लग गया आत्मा को, इसलिए इतनी ऊंची स्टेज आत्माओं ने छोड़ दी। अभी पहले हम ये देखेंगे कि वह में पवित्रता की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत ऐसा समझते हैं पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। अभी वास्तव में देखा जावे तो पवित्रता सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम सभी को ब्रह्माचारी बनना है। अर्थात बाप ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाप की जो पवित्रता है उस पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना है। दुनिया में पवित्र बनने की कोशिश करते हैं परंतु उनको विधि नहीं आती है। पवित्रता के सागर ने बहुत सरल विधि बताई है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कर्मों का जो बीज है संकल्प, बीज को सुधारने की विधि जो बताई बाबा ने, अगर मनसा सुधर जाएगी तो वाणी और कर्म स्वतः ही सुधर जाएंगे। अगर मनसा दूषित है तो उसका असर वाणी और कर्म के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनसा की पवित्रता क्या है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो भी वाणी चलती है या हम कर्म करते हैं वो पहले संकल्प में आता है मन में, उसके बाद बुद्धि उसको जजमेंट करती है और फिर वो वाणी या कर्म में आता है। तो अगर मनसा को ही सुधारा जाए तो हमारे वाणी और कर्म स्वतः ही सुधर जाते हैं। इसीलिए बाबा ने आकर के हमें कल्प पहले वाली स्मृति दिलाई कि तुम कल्प पहले वाले वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हो। तुम्हारा आदि और अनादि स्वरूप ही पवित्र है, आत्मा पवित्र स्वरूप है और देवताई रूप में तुम संपूर्ण निर्विकारी हो। इस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर वो समृद्धि आ गई, शक्ति आ गई, क्योंकि एक बारी जो काम किया हुआ होता है वो दूसरी बारी करने में कभी मेहनत नहीं लगती है। अगर कोई नया कार्य करना होगा तो मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बाबा ने जो ड्रामा का रिपीटेशन का राज हम बच्चों को समझाया, उसके आधार पर हमें अपनी स्व स्थिति में स्थित होना, स्वधर्म में स्थित होना, आदि और अनादि संस्कारों को सामने लाना और उसको धारण करना, ये कोई कठिन नहीं लगता। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले मनसा की पवित्रता किसको कहा जाए, क्योंकि ब्रह्मा बाप जिन्होंने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को ये सब कुछ करके बताया, शिव बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, परंतु निराकार। निराकार ने साकार के द्वारा हम बच्चों को ये सब अनुभव कराए, गुणों को भी कैसा धारण करना ये भी बताया, शक्तियों को धारण करके अपने कर्म में कैसा लाना इसकी भी युक्तियां बताई और कर्म करके बताया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मनसा की पवित्रता अर्थात मन के ऊपर जिन जिन बातों का असर होता है उनसे मन को बचा के रखना, जैसा अन्न की शुद्धि है, जैसा अन्न वैसा मन हमेशा कहा जाता है। इसीलिए बाबा ने पहले दिन से आकर के हमें स्मृति दिलाई कि तुम देवी देवताओं के मंदिर में किस चीज का भोग लगता है। सात्विक भोजन ये कितना आवश्यक है, इसकी समझानी बाबा ने हम बच्चों को दिया, हमें रियलाइज कराया, जिसके आधार पर हमारा खान पान शुद्ध हो गया। तो जैसा अन्न का मन के ऊपर असर होता है, वैसा ही मनसा का जो भोजन है वो संकल्प, जैसे हम संकल्प करते हैं उसका इफेक्ट तुरंत मनसा के ऊपर होता है। शुरू शुरू में जब शिव बाबा की पद्रामणि हुई, अवतरण हुआ, तो छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो बाबा ने थोड़ा सा हल्का कर दिया। बाबा कहते थे बच्चे अगर मनसा में कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, उसका खाता नहीं बनता है, परंतु वाणी और कर्म के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता। परंतु हम लोगों ने देखा पहले दिन से लेके जिस दिन मम्मा आई उसी दिन से लेके मम्मा ने अपने मनसा के ऊपर कंट्रोल किया। और मम्मा हमेशा बच्चों को बताती थी कि आज बाबा तुम बच्चों को छोटा समझ के छोड़ रहा है कि मनसा में अगर आएगा तो हर्जा नहीं है, वाचा और कर्म में नहीं आना चाहिए, परंतु आप लोग याद रखना है एक दिन यही बाबा आप लोगों को कहेगा कि अगर मनसा में भी संकल्प विकल्प आते हैं तो उसका भी बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। अभी तो हम लोगों ने बहुत लंबी जर्नी पास कर लिया है, तो अभी बाबा हम बच्चों को संकल्पों के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि संकल्प जो पवित्र आत्माएं हैं, जो रॉयल आत्माएं हैं, उनको कभी भी विकल्प, तो क्या विकल्प और संकल्प, इसमें अंतर होता है। विकल्प अर्थात विकारों के अधीन होकर के कोई भी संकल्प आना, कोई भी विकार, सिर्फ काम विकार की बात नहीं, मोह लोभ ईर्ष्या वैर द्वेष, किसी भी विकार के कारण संकल्प आना, विकारों के अधीन होकर संकल्प आना, इसको विकल्प कहा जाता है। इसके ऊपर तो खैर ब्राह्मण ध्यान देते हैं कि ऐसे विकल्प हमें नहीं चलने चाहिए, उसका अटेंशन भी रखते हैं, परंतु फिर भी भले विकल्पों के ऊपर ध्यान दिया, परंतु व्यर्थ संकल्प जो है, जिन व्यर्थ संकल्पों के कारण शक्ति नष्ट होती है, जिन व्यर्थ संकल्पों के कारण समय नष्ट होता है और आत्मा कमजोर बनती है, तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि अभी जो पीरियड तुम्हारा चल रहा है, इस समय तुम्हें व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, फालतू संकल्प भी नहीं चलने चाहिए। जैसा हम देखते हैं कोई एक बड़ी टांकी है जिसमें पानी भर रहा है ऊपर से, और अगर उस टांकी को नीचे से जरा भी लीकेज होगा, होल होगा, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सारा पानी बह जाता है। तो उसी प्रकार एक तरफ तो हम बाबा को याद करके अपने में शक्ति भरते हैं, और दूसरी तरफ अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फालतू संकल्प चलते हैं, तो हमारी शक्ति नष्ट होती जाती है। और जिसके कारण यही अनुभव करते हैं कि हम चल तो रहे हैं, परंतु कौन सी चाल से चल रहे हैं ये नहीं देख। आज भी जैसा बाबा ने तीव्र गति कहा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीव्र गति चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो व्यर्थ संकल्पों के कारण जब हमारी शक्ति नष्ट होती है, शक्ति नष्ट होने के कारण आप देखो कमजोरी आती है। जैसा शरीर की शक्ति नष्ट होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा तो आपको यहां से वहां तक चल के जाना भी भारी पड़ेगा, और वो ही अगर शरीर में ताकत है तो आप दौड़ लगा सकते। तो वैसा ही अगर आत्मा कमजोर होती है व्यर्थ संकल्पों के कारण, तो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमें बहुत दूर दिखाई पड़ता है। तो जब व्यक्ति को लक्ष्य दूर दिखाई पड़ता है और उसमें भागने की दौड़ने की शक्ति नहीं है, तो उस समय वो नाउमेद हो जाता है कि अरे इतने थोड़े समय में मैं वहां तक कैसा पहुंच सकूं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया, कि अपनी मनसा को पवित्र बनाने के लिए व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करो। अभी कैसा किया जाए व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कंट्रोल? आज ये समझो ग्लास है मेरे सामने, ये पानी से भरा हुआ है, अभी इसमें से इसमें मुझे अगर दूसरी कोई चीज डालनी है, दूध डालना है समझो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पानी बाहर फेंकना पड़ेगा। परंतु खाली ग्लास है, खाली ग्लास में हम कहते हो खाली, पर खाली नहीं होता है, उसके अंदर हवा होती है, उस हवा को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज उसमें एडिशन करनी पड़ेगी, मैं पानी डालेगी या कुछ भी डालेगी वो हवा निकल जाएगी। तो उसी प्रकार आज जो मनसा के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो इम्प्यूरिटी है, उन व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए, उन व्यर्थ संकल्पों को निकालने के लिए हमें समरथ संकल्प करने की शक्ति को निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम समरथ संकल्प उठाएंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खलास होता जाएगा। परंतु वो समर संकल्प कैसे उठाया जावे, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को युक्तियां बताई हुई है कि बाबा तुम बच्चों को जो समझ देता है, बाबा क्यों बोलता है रोज मुरली सुन, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बाबा हम बच्चों को रोज नई नई युक्तियां बताता है। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमेशा का क्या कहा जाता है, जो पुरुषार्थी है जो गॉडली स्टूडेंट है उसमें एक पहला गुण कौन सा होना चाहिए, अध्ययन का, पढ़ाई का। तो बाबा की मुरली को, ज्ञान के किताबों को पढ़ करके अध्ययन करो, उसका बैठ करके अध्ययन करने के बाद उसका चिंतन करो। हम क्लास सुनते हमें बहुत अच्छा लगता है, फलाने ने बहुत अच्छा क्लास कराया, परंतु वो मेरा कितना रहा, मैंने उसको अपना कितना बनाया, और समझो मैंने अच्छा क्लास कराया, पहले मैंने सुना फिर मैंने बोल दिया अच्छा, परंतु अगर उसको मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं हुई। मुझे दूसरों को सुनाने विधि ये है, जब मेरे को जो बातें बाबा ने समझाई हुई है उन बातों को अपना बना करके पीछे आप दूसरों को दो, तो वो जो ज्ञान है, वो जो पढ़ाई है, वो मेरी प्रॉपर्टी, निज प्रॉपर्टी हो जाती है, मेरा वो अनुभव हो जाता है जो मुझे जीवन में भवसागर पार उतारने में मदद करता। परंतु मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो जब मैंने उसको सुना ही नहीं ध्यान से तो क्या होगा बताओ, उसको अपना कैसा बनाए। तो बाबा ने हमें मुरली सुनने की भी विधि बताई है कि जब बाबा मुरली सुनाता है तो हर एक ये समझो कि बाबा मुझे पढ़ाने को आया है, बाबा मेरे को सुना रहा है। एक बार ऐसा ही हम मधुबन में पार्टी लेके आए हुए थे, पहले बहुत थोड़े बच्चे होते थे ना क्लास में, तो हम लोग बहुत थोड़े होते थे, भाई बहन थोड़े से भाई बहन थे। बाबा ऐसा संदल पर बैठा था मेडिटेशन हॉल में, बाबा मुरली सुना रहे थे, और मैं ऐसा आगे, कुमारियां हमेशा आगे की लाइन में कुमारियों को बिठाते थे, मैं आगे की लाइन में बैठी थी और बाबा की बहुत अच्छी मुरली चल रही थी, मैं पॉइंट्स लिख रही थी, बाबा मेरे को देख रहा था, मैं नीचे देख करके पॉइंट्स लिख रही थी। फिर बाबा ने अचानक मेरे से पूछा, बच्ची क्या कर रही हो? मैंने बोला, बाबा मैं पॉइंट लिख रही हूँ, आप बहुत अच्छी मुरली चला रहे हैं, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ। बाबा ने कहा, क्या करेगी लिख? मैं बोला, बाबा मैं बम्बई जाएगी ना, वहां क्लास वालों को सुनाई। बाबा ने कहा, तुम बम्बई वालों को जाके सुनाएंगी? बाबा तेरे को सुना रहा है, बाबा तेरे लिए बोल रहा है। देखो हमारी बुद्धि कितने में खिसक जाती है, हमारे को वो याद है, परंतु ये मेरे लिए बाबा सुना रहा है, जब मैं समझेगी मेरे लिए सुना रहा है तभी मैं उसको धारण करेगी ना, मैं ये दूसरों को सुनाने के लिए सुन रही हूँ तो मेरे को धारणा कहां से हूं। तो तभी से लेके हमने कान पकड़ा कि बाबा के जो भी महावाक्य है वो मेरे लिए है, भगवान मेरे लिए आया है, सबके लिए आया है, उसमें ये नहीं करो आप, परंतु भगवान खास मेरे लिए आया है, मुझे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे देवता बनना। तो बाबा ने ये विधि हमको बताई, तो मनसा को पावरफुल बनाने के लिए बाबा के जो भी महावाक्य है वो बहुत ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद उसका चिंतन करो, चिंतन करने के बाद मनन करो। जब चिंतन और मनन करते, बाबा हमेशा कहते थे, देखो बच्चे जानवरों में भी अक्ल होता है, गाय एक घंटा घास खाएगी सारा दिन रवंत करती रहेगी, चबाती रहेगी चबाती रहेगी, जब तक वो चबाएगी नहीं तब तक उसका ब्लड नहीं बनेगा, तब तक उसको शक्ति नहीं आएगी। तो उसी प्रकार तुम एक घंटा भले ज्ञान सुनते हो या बोलते हो, फिर सारा समय उसको चबाओ अर्थात उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, तो जितना जितना तुम उसको चबाएंगे अर्थात मंथन करेंगे, उतना उतना क्या होता जाएगा, वो तुम्हारा बनता जाएगा। नहीं तो क्या हुआ, मैंने सुना और फिर मैंने रिपीट कर दिया, ये तो सेल्समैन का काम किया मैंने। जैसा सेल्समैन होते हैं, देखो दुकान में, कपड़े की दुकान में कोई सेल्समैन है, वहां वो कोई, आप जाते हैं उसके पास, चादरें लेने को जाते, क्या वैरायटी निकालता है वो, एक पैके का वैरायटी, दूसरे पैके का, दूसरा कलर, ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा ये लो ये लो, होशियार सेल्समैन ऐसे ही होते हैं। परंतु वो इतना सारी दुकान चादरों से भरी पड़ी है, पर उसके एक इंच के ऊपर भी उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार, उसको अगर चाहिए तो खरीद करना पड़ेगा, उसका अधिकार नहीं है। तो उसी प्रकार हम सिर्फ सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, तो सेल्समैनशिप हो गई, मेरा उसके ऊपर अधिकार तो नहीं रहा। लिया मैंने, जो लिया वो दे दिया दूसरे को, बाबा ने मेरे को दिया, मैंने औरों को दिया, नहीं औरों को देने के पहले बाबा कहते हैं इसको अपना बनाओ, खुद धारण करो। तो मनन चिंतन करने से क्या होता है, वो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर धारण हो जाता है। और ये ज्ञान सिर्फ अमृत नहीं है, ये ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ज्ञान एक शक्ति, ये शक्ति का रूप ले लेता है, ये शस्त्रों का रूप ले लेता है, जो माया रावण के साथ युद्ध करने में हमारे कोई शस्त्र काम में आते। तो इसीलिए मनसा को प्योर बनाने के लिए, मनसा को पवित्र बनाने के लिए हमेशा हमारे को ज्ञान का मनन चिंतन करना चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए, परमात्म चिंतन करना चाहिए। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतनी उतनी हमारी मनसा पवित्र होती जाती, और मनसा जब पवित्र होती है तो जो संकल्प उठते हैं वो सदैव शुद्ध और पावरफुल संकल्प उठते। तो अपवित्रता को निकालने के लिए हमारे को ये मेहनत करनी पड़ेगी खुद के। आज अगर ब्राह्मणों से पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं है, परंतु संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं। अभी जिस गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगता है तो उसका तो एक्सीडेंट ही होने वाला, ब्रेक तुम्हारी पावरफुल नहीं है तो क्या होने वाला है, तो ब्रेक को तो पावरफुल करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें खुद के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा जो घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे जो भी बीता फुल स्टॉप, जो बीता फुल स्टॉप, जीत बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती, जो बीत गया उसका चिंतन मत करो। चिंतन नहीं करे तो क्या करे, बीते हुए का चिंतन नहीं करे, परंतु वर्तमान की तो शुद्ध लेवे हम। इसीलिए हमारे को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए कि मुझे मेरा जीवन कैसा व्यतीत करना, पास्ट को पास्ट करके आगे बढ़ते जाओ। तो इसीलिए मनसा को पवित्र बनाने के लिए हमारे को शुद्ध संकल्पों के भोजन की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान देना। उसके बाद दूसरी बात देखते हैं, वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता क्या है, पवित्रता को शुद्धता भी कहते हैं, अर्थात सच्चाई और सफाई। झूठ ये अपवित्रता है, हमारी वाणी सदैव सत्य होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। जो सत्य होता है उसको सच्चा कहते हैं ना, उसको सच्चा कहते हैं। जो शुद्ध चीज होगी उसको सच्चा सोना है, सच्चा सोना है ना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। तो हमारी वाणी में कोई भी मिलावट नहीं होवे, प्योर होवे, स्वच्छ होवे, पवित्र हो। अर्थात ही कैसी हो, ज्ञान युक्त वाणी हो, व्यर्थ वाणी नहीं चले, क्योंकि हम प्यूरिटी रॉयल्टी भी है। तो रॉयल बच्चे हमेशा कम बोलते, आपने देखा होगा ना, जो रॉयल व्यक्ति होगी ना वो ज्यादा बात नहीं करती, वो थोड़ी बात करेगी, परंतु जो बोलेगी वो सत्य बोलेगी। आज तक महात्माओं के लिए क्या कहते हैं, सत्वचन महाराज। महाराज के सत्वचन क्यों हुए, क्योंकि वो सत्य बोलने वाले, अभी तो नहीं बोलते, वो बात उनकी रह गई, परंतु सत्वचन महाराज इसीलिए हुए क्योंकि हमारी वाणी में सत्यता आई, इसीलिए जो बोला वो सत्य हो गया। पीछे सुनाई पड़ रहा है, पीछे वालों, तो जो बोला वो क्या हो गया, वो सत्य हो गया। तो हमारी वाणी हमेशा सत्य हो, हमारी वाणी हमेशा स्पष्ट हो, और हम जो बोलते हैं हम वो करके बतावे। कोई कोई सोचते बहुत है, सोचेंगे 100% सोचेंगे, करेंगे उसमें से 50% भी नहीं करेंगे, बोलेंगे उससे 50% बोलेंगे और करेंगे उसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। मन में ऐसा बनेगा, बाबा आप देखना, आप मैं हम आपको जरूर बन के बताएंगे, अंत के समय हम अपनी स्थिति को ऐसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ओम शांति। अभी नहीं बने तो अंत में कहां से बनने वाले। बाबा बोलता है तुम्हारे वायदों की फाइल मेरे पास बहुत पड़ी है, और ज्यादा फाइलें बढ़ाओ नहीं, बहुत फाइलें बढ़ाएंगे तो फाइन ज्यादा भरना पड़ेगा तुम, इसीलिए ये सब फिनिश करते जाओ। तुम जो सोचते हो, ज्ञानी का मतलब ये है, संकल्प बोल और कर्म ये तीनों समान होने चाहिए तुम्हारे। तो वाणी की पवित्रता अर्थात ही सत्यता है, सच्चाई और सफाई, सच्चे दिल पर साहब राजी। हमारी मनसा भी सत्य हो, हमारी वाणी भी सत्य हो। परमात्मा को सत्य कहा जाए, सत्यम शिवम सुंदरम, उसका गायन ही सत्य है, उसको सत्यता अच्छी लगती है। और जिसके पास सत्यता है, जिसकी वाणी सत्य है, वो सदैव खुशी में नाचता रहे। सच तो बिठो नच, अगर एक झूठ बोलेगा व्यक्ति, उस एक झूठ को बोलने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसीलिए एक झूठ ही नहीं बोलो जो 100 झूठ तुमको बोलना पड़े। सदैव सत्य बोलो, ऐसा बोलो, रोज क्लास के बाद बोलते ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। बाबा बोलता है सत्य बोलो परंतु सभ्यता से बोलो। आज कोई काना है, आप काने को काना बोलेंगे तो उसको नहीं सहन होगा, पर काने को अगर आप बोलेंगे ना कि आपकी आंख में कुछ फर्क है क्या, बोलेगा हाँ वो क्या, मेरा ना जन्म से ही एक आंख ऐसी, वो खुद ही मान लेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है। साकार बाबा बोलता था तुम जूता लगाते हो ना, मखमल का जूता लगाओ, जरा नरम तो लगे उसको। जूता लगाना मन सचमुच जूता नहीं, मना कोई भी ऐसी बात अगर तुम बोलते हो उनको, तो जरा सभ्यता से बोलना सीख जाओ। तो वाणी में हमारी सभ्यता होनी चाहिए, वाणी हमारी मीठी होनी चाहिए, ऐसा बोल बोले जिस बोल के द्वारा उस आत्मा का उद्धार हो जाए। इसीलिए सत्वचन महाराज का ये है सच्ची पवित्रता, ये है सच्ची रॉयल्टी। ज्यादा नहीं बोलो, कम बोलो। कोई कोई क्या करते है, कहते हैं बहन जी हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, हमको बोलने की आदत ही नहीं, हम बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, पर बोलेंगे ऐसा जो सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा उस बात के। वो क्या बोलना हुआ या पत्थर मारना हुआ। इसीलिए वाणी में मिठास होनी चाहिए, मीठी बोली से तो सारे काम चलते हैं ना। कहते हैं ये जो जबान है ना, ये पट पर भी बिठाती और खट पर भी बिठाती, इसमें इतनी ताकत है वाणी। तो बाबा ने हमें वाणी से सत्य बोलना सिखाया, सच्चाई और सफाई सिखाई। सत्यता लाओ, अपने अंदर रॉयल्टी लाओ। रॉयल्टी वाले बहुत कम बोलने वाले होते हैं, रॉयल व्यक्ति सोच समझ के बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। हम बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान माना सिर्फ सृष्टि चक्कर का ज्ञान नहीं है, कर्म फिलॉसफी जो समझाई उसमें बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी बोलते हो, उसका आदि मध्य और अंत सोच करके पीछे करो। हम जो कर रहे क्या बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी एंड क्या होगी, वो सब सोचो। सोच के बोलने के बाद या सोच के कर्म करने के बाद आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा। हमारे अंदर वो रॉयल्टी चाहिए जो रॉयल होते हैं, वो कभी भी रस्ते में से गिरी हुई चीज को नहीं उठाते। छोटे बच्चे भी हो गए ना, जो रॉयल घराने के बच्चे हो गए, अगर किसी की कोई चीज गिर जाएगी तो उठाएंगे नहीं कभी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर सच्चाई की पवित्रता की रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी की निशानी क्या है, सामने वाली व्यक्ति जिसके अंदर कमी और कमजोरी है वो अपनी कमी को फेंकना चाह रहे हैं और तुम उसको उठा रहे हो, ये तुम्हारी रॉयल्टी। तुम उचित पर धर रहे हो उसकी कमी को, ये रॉयल्टी, इसको रॉयल्टी नहीं कहे। तुम देखते हो ये भी नहीं देखो, तुम आगे बढ़ जाओ। यहां तक भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया हुआ है कि तुम्हारा जो पुराना स्वभाव है, तुम्हारा जो पुराना संस्कार है, ये क्षुद्र जन्म का है। तुम्हारे जो पुराने विचार है क्षुद्र जन्म के, तो अगर वही पुराना स्वभाव, वही पुराना संस्कार तुम इस ब्राह्मण जन्म में लाते हो तो ये भी तो चोरी हो गई, क्षुद्रों की चोरी किया तुम ब्राह्मणों ने, तो क्या ये तुम्हारी रॉयल्टी? हम कभी अपने से बैठ के पूछे तो सही कि हम रॉयल बाबा के बच्चे हैं तो हमारी रॉयल्टी क्या है, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कर्मों की पवित्रता क्या है। कर्मों की पवित्रता है सुख देना, सुख लेना, सामने वाले को भी सुख दो और तुम भी सुख लो। ऐसा नहीं उसको सुख दो और तुम दुख लेते रहो। हम ब्राह्मण इस बात पर ध्यान देते हैं और उनको दुख नहीं देना है, इसीलिए बोलेंगे नहीं, परंतु अगर कोई दुख देगा तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तुमने मेरे को दुखी कर दिया। अरे पर मैंने लिया क्यों, उसने तो दिया मेरे को, पर मैंने क्यों लिया? तो दी हुई ऐसी खराब चीज किसी ने दिया और मैंने ले लिया, क्या ये मेरी पवित्रता है? तो हमें अपनी मनसा वाचा और कर्मणा तीनों के ऊपर फुल अटेंशन देने की आवश्यकता है, अगर ऊंचा पद पाना है तो, अगर नहीं पाना हो तो तकलीफ करने की जरूरत। बाबा जबरदस्ती हमको राजा ही नहीं देता है, वो बोलता है देखो मेरे तो भंडारे खुले पड़े हैं, तुम्हारे को जो पद चाहिए ले लो। आज भी बोल रहा था ना बाबा, वहां तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है, यहाँ तो झगड़े वगड़े की तो बात ही नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ की बात है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतना ही मिलता है। तो हमारी जो रॉयल्टी है, रॉयल संस्कार अर्थात दाता के संस्कार, जो रॉयल होते हैं वो हमेशा दाता होते हैं, वो मांगते नहीं। अगर आज हमको मान चाहिए, आज हम सम्मान मांग रहे हैं, आज हमारा नाम होना चाहिए, ये तो भिखारी के संस्कार है, ये दाता के संस्कार का। ये इच्छा रखना भी क्या है, ये रॉयल्टी नहीं, इसको रॉयल्टी नहीं कह सकते। रॉयल संस्कार तो हमेशा देने के संस्कार होते। आप साकार बाबा की अगर जीवन कहानी भी देखेंगे, लौकिक में भी बाबा के अंदर कितनी रॉयल्टी थी। ब्रिजेंद्रा दादी सुनाती थी, बाबा के पास ये जो भी राजाएं हैं ना वो खास आते थे ज्वेलरी बनाने के लिए। इन राजाओं का एक नियम होता है, ये जब भी राज गए, इनकी राज दरबार लगती है ना, तो ये पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनते, हमेशा ये हर राज दरबार में नई ज्वेलरी पहनते, और उनको नई नई डिजाइन चाहिए, नई ज्वेलरी तो नई डिजाइन चाहिए, तो बाबा इसमें बहुत होशियार थे नई डिजाइन बनाने। इसीलिए नेपाल के राजा है, उदयपुर के, ये सब आसपास वाले जो भी जयपुर इधर उधर के राजा हैं, बाबा के पास जाते थे। वहाँ कभी कलकत्ते में जाएंगे, कभी कराची वहां जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, और जाके ऑर्डर देते थे और बनाते थे। तो ये राजाएं बाबा के पास जब आते थे, बाबा इनकी बहुत खातिरी करता था। बाबा बड़ा फराग दिल था, बहुत खातिरी करता था, क्या पकवान खिलाता था उनको, परंतु अपना नियम कभी नहीं छोड़ता। बाबा वैष्णव पंथी था पहले भी, देखो ड्रामा प्लान अनुसार कैसा एक एक का पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है ना। विष्णु बनने वाला ही विष्णु पंथी था, तो इसीलिए कभी शराब कबाब तो कभी टच भी नहीं करे, और किसी को कभी खिलावे भी नहीं और देवे भी नहीं। तो बाबा उनकी और बहुत माल खिला खिला के बड़ी खातरी करता था। तो राजाएं बोलते थे, लखीराज बाबू भगवान से भूल हो गई, उसको राजा आपको बनाना चाहिए था, परंतु हमको बना दिया। अभी उनको तो ये मालूम नहीं था कि भगवान को इसको राजाओं का राजा बनाना है, तो कैसा क्या राजा बनाएगा, सिंगल कैसा बनाएगा उसको। तो मतलब इतनी बाबा की उदारता थी, बाबा के अंदर इतनी रॉयल्टी थी, इतना दातापन था, परंतु बाबा नियमों का भी इतना ही पक्का था। तो राजाएं तो खाने पीने वाले होते हैं ना, तो वो हंसते थे, प्यार बहुत था, हंसते थे, वो कहते थे क्या लखीराज बाबू आपकी पार्टी तो फीकी फीकी है, क्योंकि उनको ना शराब मिलता था ना कबाब मिलता था। तो बाबा बोलता था, तुम क्या करते हो, तुम मेरे को कागज देते हो और मैं तुम्हारे को सच्चे हीरे देता हूं, तो क्या तुम्हारे लिए मैं मेरा धर्म छोड़ दूं कागजों के पीछे। अरे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, अगर मरना भी पड़े तो भी धर्म नहीं छोड़ सकते, धर्म मन धारणा है। तो हम उस बाप के बच्चे हैं जिसने लौकिक में भी कभी धर्म नहीं छोड़ा, तो अलौकिक की तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा के अंदर इतनी धारणाएं पक्की थी, बाबा के अंदर इतना दातापन का एक संस्कार पड़ा हुआ था जो सामने वाले को दिखाई पड़ता था। तो जब हमारा बाबा इतना श्रेष्ठ और इतना ऊंचा है, तो हम बच्चों को भी ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम्हें क्या करनी है, सिर्फ तुम कार्बन कॉपी बनाओ ना, ओरिजिनल भी नहीं कार्बन कॉपी बनाओ, उसमें सिर्फ कार्बन का कागज रख दो, अटेंशन बस। हम जो बोलते हैं बाबा ऐसा बोल सकता है, हम जो करते हैं बाबा ऐसा कर सकता है, भेंट करते चलो। तो जितना जितना हम अपने मनसा की, संकल्पों की, उसके बाद वाणी की और कर्मों की बाबा के साथ भेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, उतनी उतनी हमारी कमियों की भेंट चढ़ती जाएगी। शिव के ऊपर भेंट चढ़ेगी हमारी कमजोरियों की, क्योंकि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप के साथ कंपेयर कर। आपस में एक दो के साथ कंपेयर नहीं करो। बाबा ने कभी नहीं बोला तुम फलाने को फॉलो करो, सदैव बाबा ने यही कहा, सी फादर फॉलो फादर, बाबा को सामने रखो। तो जितना हम बाबा को सामने रख करके चलते हैं, उतना हमारे कर्मों में सत्यता भी आती जाती है, सुखदायी भी बनते जाते, उतनी हमारी मनसा भी प्योर होती जाती है, वाणी भी हमारी श्रेष्ठ और ऊंची बनती जाती है। और जो पवित्रता है, जितनी जितनी पवित्रता हमारे अंदर आती है, पवित्रता के द्वारा उतनी उतनी हमारी खुशी भी बढ़ती जाती है। आप व्यर्थ सोचेंगे तभी कैसी स्थिति हो जाती है, देखो चेहरे पर से मालूम पड़ जाता, और वही अगर समर्थ सोचते हैं तो स्थिति कैसी बन जाती। छोड़ो इस बात को भी, समझो अभी हमारे पास कोई आता है, अचानक कोई भी नया आदमी आता है, आकर के आप लोगों के चेहरे देखता है, फिर अपना अनुभव बताता है, यहाँ तो जिसको भी देखेंगे उसके चेहरे चमकते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि हम रोज देखते हैं, परंतु बाहर वालों को लगता है, अनुभव होता है, इनके चेहरे कितने खुशी के और चमकते रहते हैं इन लोगों के चेहरे। और वही व्यक्ति अगर समझो किसी कारणवश बाबा का हाथ छोड़ के चला जाता है, आप देखो उसके चेहरे में कितना फर्क हो जाता। प्यूरिटी की जो चमक है वो चेहरे के ऊपर आती, क्योंकि प्यूरिटी ये लाइट। प्यूरिटी को धारण करने वाले अपने में हल्कापन अनुभव करते, उनके सारे कार्य भी आप ही हल्के हो जाते हैं, उनको कर्म का भी बोझ नहीं होता है। करण करावन हार स्वामी, उनको बाबा याद रहता है। तो जितना जितना हम पवित्रता को धारण करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो दिव्यता, वो अलौकिकता आती जाती। तो इसीलिए हम लोगों को तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो कार्बन कॉपी बनना है। मेहनत किया तो ब्रह्मा बाबा ने किया, उसके आगे तो कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई था क्या फॉलो करने वाला? ब्रह्मा बाबा को तो खुद को करना पड़ा, परंतु हमारे को तो खुद को करना ही नहीं है। बाबा जिस रास्ते से गया हमको उसी रास्ते से जाना है, हम कोई नया रास्ता थोड़ा ही ले रहे हैं। आज कोई नया रास्ता ले गए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा 10 आदमियों से, ये फलानी जगह पर जा रहा क्या, यही माउंट आबू जा रहा क्या? परंतु ऐसा तो है नहीं, बाबा ने आपको रास्ता बता दिया, आगे आगे चल के बता दिया, आपको सिर्फ फुट स्टेप उठाने हैं उसके ऊपर, वो भी उसके कदमों के निशान पड़े हुए है, वो कदमों के ऊपर कदम रखना। बाबा ने बहुत सहज करके हमको समझाया हुआ है, सहज मार्ग बताया, कठिन मार्ग नहीं बताया। इसीलिए देखो नाम क्या है इसका, सहज ज्ञान सहज राजयोग। नाम ही इसका सहज ज्ञान और सहज राजयोग है। आप बोलते हो ना हमारे पास सहज ज्ञान सहज राजयोग सिखाया जाता है, या बोलते हो कठिन राजयोग कठिन ज्ञान सिखाया जाता है। हमारा ज्ञान बड़ा सहज है, हमारा योग बड़ा सहज है। सहज क्यों है? क्योंकि करने वाले ने हमको करके बताया, इसीलिए सहज है। कोई करके बताता है तो करना बहुत सहज होता है, खुद को करना होगा तो कठिन लगता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉलो फादर करना, हमें सिर्फ बाबा को सामने रखना है, उसके पीछे भागना है और कुछ नहीं करना। तो बाबा के अंदर जो प्यूरिटी की ताकत थी, उस प्यूरिटी की ताकत के कारण क्या होता था, कोई भी बाबा के सामने आएगा तो उसको लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी, उसको हल्कापन दिखाई पड़ता था। पवित्रता ऐसी शक्ति, उसके लिए आत्म अभिमानी बनने की जरूरत है। जितना जितना देह से अलग होते जाते हैं, उतना उतना आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में आती जाती है। ओरिजिनल तो आत्मा पवित्र है ना, ये तो माया का छाया पड़ गया उसके ऊपर। तो अपनी ओरिजिनल स्टेज में हम जितने जितने आते जाते उतनी उतनी वो मैल हटती जाती है, आत्मा सच्चा सोना बनती जाती है। इसीलिए जितना याद करेंगे बाबा को, बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलता है, निरंतर मेरे को याद करो, क्योंकि निरंतर उसको याद करेंगे तो उसके संग का रंग हमारे को लगे। संग के रंग से हमेशा बचा जाता है कि ऐसा कोई खराब का संग खराब संग नहीं लगे। कोई पूछता है ना फलाना आदमी कैसे, अरे कहते हैं तुम फलाने आदमी का काहे को पूछते, उसके दोस्त कौन से वो पूछ लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वो दूसरे संस्कारों में आकर्षण है, एक जैसे संस्कारों का आपस में आकर्षण होता है। तो बाबा के जो संस्कार है, बाबा के जो गुण है, बाबा की जो शक्तियां हैं, तो जितना जितना हम उसके साथ संग करते हैं, संग का रंग हमारे ऊपर लगता जाता है। इसीलिए तो सत्संग गाया गया, सत्य का संग, परमात्मा का संग माना सत्य का संग, जिस सत्संग से ही सतयुग आ जाता है। लोग थोड़े सत्संग क्या समझते, अर्थ नहीं समझते उस सत्संग, परंतु हम प्रैक्टिकल में करते हैं सत्य का संग, और ये संग हम निरंतर कर सकते। निरंतर क्यों बोलता है बाबा, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। और अंत के समय अगर हमारे को बाबा याद नहीं रहा तो इतना बरस जो मेहनत किया वो तो वेस्ट हो गई हमारी। इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद कर। मम्मा को किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आई, छोटी आयु में आई मम्मा, इतनी छोटी आयु में आई और इतनी बड़ी बड़ी दादियां थी सब थे, फिर आप मम्मा मम्मा कैसे बन गए? मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करते? मम्मा ने कहा मैं कुछ खास पुरुषार्थ नहीं करती, पर सदैव मैं ये याद रखती हूँ कि मेरी यही घड़ी अंतिम घड़ी है। अभी आप बताओ जिसको सदैव मौत याद होगा उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? उसकी बुद्धि तो कहाँ जा ही नहीं सकती। तो भावा हम बच्चों को घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अब घर जाना है, अब ये याद रखो, जितना जितना घर को याद करेंगे उतना उतना तुम्हारी स्थिति उपराम होती जाएगी। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी बुद्धि स्वतः ही उपराम हो जाएगी, न्यारे हो जाएगी, तो प्रभु के प्यारे बन जाएगी, उस जैसे बन जाएगी। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा बन जाती है, आत्मा सो परमात्मा नहीं बनती है पर परमात्मा के समान तो बनती है ना, ऐसा थोड़ी नहीं, मास्टर तो जरूर बनते हैं ना। इसीलिए ये जो गायन है जिधर देखूं तू ही तू है, हमारी स्थिति का गायन है। अंत के समय ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी हो जाएगी जो मेहनत कर रहे हैं, पर कंडीशन ये है जो मेहनत कर रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जो सबको वो ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं सन शोज फादर, तुम्हारे में से बाप दिखाई देना चाहिए। और वैसा होता है ना, देखो कोई बच्चा अच्छा होता है, उसके गुण अच्छे होते हैं, उसका बोल अच्छा होता है, तो पूछते हैं ये किसका बच्चा है, तुरंत पूछेगे ये किसका बच्चा है, वो बाप का शो करता है ना, कहे यार ये फलाया, अरे उसका बाप भी ऐसा है। तो हम लोग बाबा का शो करने वाले हैं ना, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हम बच्चे, तो इसीलिए हमें अपनी मनसा के ऊपर, वाणी के ऊपर और कर्म के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देके संस्कार परिवर्तन से सारा संसार परिवर्तन करने की जो बाबा ने हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो हमें पूरी करनी और पवित्र दुनिया लानी है हमें। इसीलिए हमारी पवित्र मनसा से क्या होता है, सब वातावरण चेंज होता है। बाबा पतित पावन है, हम बच्चों को बाबा मास्टर पतित पावन बनाता है। बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन करता है और हमारे योग बल से ये पांच तत्व जो है, प्रकृति जो है, ये पतित से पावन बनती। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते इसके वाइब्रेशन फैलते हैं। लोग बोलते हैं कि जो योगी होते हैं हठ योगी, उनका योग का वाइब्रेशन 36 माइल दूरी तक जाता है। अगर हठ योगियों का वाइब्रेशन 36 माइल दूरी तक पहुंच सकता है तो राजयोगियों का विश्व तक पहुंचेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, बहुत इजी बात है। तो इसीलिए पवित्रता वगैरह ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो हमारे गुण है जो हमको, जो हम भूल गए थे वो वापस धारण करने और क्या है, और पवित्र बन के बाबा के साथ जाना। और जो रायल है तो रायल्टी तो है ही, इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो हमारे अंदर रायल्टी नहीं होगी तो किसके अंदर होगी? रायल वो होता है जो कभी पराई बातों में नहीं आता, जो कभी पुरानी बातों को नहीं दोहराता है, पुरानी बातों को भी फुल स्टॉप लगाओ, पराई बातों को भी नहीं देखो, सदैव स्व को देखते रहो और अपने बाप को देखते रहो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ओम शांति।
पर बिखरी सच्चाई अंतर में निर्मलता आई। साझ